چاہیے۔ 19 جون 2025 آج کی ساکار مرلی رنگین بڑے بڑے اکثروں میں پڑھیں، سنیں اور منتھن کریں۔ ہم پرتی دن پرات 4 بجے، 6 بجے، شام کو 4 بجے، 8 بجے مرلی منتھن کرتے ہیں۔ آپ سبھی بھی اس مرلی منتھن میں ساتھی و سہیوگی بن سکتے ہیں، جس کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دو لنک دیے ہوئے ہیں، ایک گوگل میٹ کا، ایک یوٹیوب لائیو کا۔ آپ جیسے بھی سیدھا ہو آپ جڑ سکتے ہیں۔ جڑنے کے لیے ویڈ ایک ہی لنک چاروں سمے کے لیے ہمیشہ رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی یدی آپ کو جڑنے میں کٹھنائی آ رہی ہے تو آپ اسی ویڈیو میں جو سامنے دیکھ رہے ہیں چوتھی لائن میں واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس پر میسج کر کے آپ لنک منگا سکتے ہیں، پرشن پوچھ سکتے ہیں، اور یدی آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آج کی مرلی کا ساتھ میٹھا میٹھا بابا کہتے میٹھے بچے، ابھی تم ایشوریہ اولاد بنے ہو۔ بنتا کون ہے؟
آتما
بنتی ہے۔ بنتا کون ہے؟ جو ہوتا نہیں۔ میرے پتا جی کو میں پتا جی نہیں بناؤں گا، میرے بیٹے کو میں بیٹا نہیں بناؤں گا، میرا بھائی نہیں ہے تو میں کسی کو بھائی بناؤں گا، میری بہن نہیں ہے تو میں کسی کو بہن بناؤں گا، بہن ہے اسے بہن بناؤں گا نہیں۔ یہ راز سمجھ میں آیا؟ ہم اس کے لیے اولاد ہیں یا اس کے لیے اولاد بنے ہیں؟ بنے ہو یا ہیں، ان دونوں میں انتر ہے جی۔
بابا نے اسکول کی سلائی پہلے سے تو ہے، آج پر
بابا نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم ہیں کہاں سے ان کے بچے جی؟ آدھی انادھی بناتے ہیں، ہے نہیں، یاد رکھنا۔ ہم پرماتما کی سنتان نہیں ہیں، بنے ہیں۔ ہم پرماتما کی سنتان تب جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہو۔ اس نے ہم آتماؤں کو پیدا نہیں کیا، یہ لائن بہت کلیئر سپشٹ کر رہی ہے۔ میٹھے بچے ابھی تم ایشوریہ اولاد بنے ہو نہیں، جب آپ اولاد ہوتے تو بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ستیگ ہم دیوی سنتان، کھتریہ سنتان، ویشیہ کی سنتان، شودر کی سنتان، ہر کل اسی سمے یہ لائن بابا آ کر ہمیں سناتے۔ تمہارے میں کوئی آخری گن نہیں ہونا چاہیے، آخری گن ہوگا تو کس کی سنتان بن جائیں گے؟ راون کی سنتان۔ ایک سیکنڈ میں ہم نے بابا کا کہنا مانا تو بابا کے بچے، بابا کا کہنا نہیں مانا تو آخری گن راون کے بچے۔ इस समय हम बाबा की डायरेक्शन को कितना एक्सेप्ट करते हैं उतना हम बाबा के बच्चे बनते हैं। 100%, 90%, 80%, 70%, 10%, 1%। जितना बाबा की श्रीमत पर चलते अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। हमें आज की मुरली में ये समझ में आया, जब तक हम बाबा की श्रीमत पर जितना चल रहे हैं उतना हम परमात्मा की संतान हैं, जितना हम दुनिया वालों की मत पर चल रहे हैं तो उनके कितना हम दुनिया वालों के हैं, कितना हम बाबा के हैं, कितना हम रावण के हैं, ये हम समझ सकते हैं। शीशा दे दिया है बाबा, दर्पण दे दिया है, केवल हम उतने समय तक, उतनी ही मात्रा तक, उतनी ही स्टेज तक परमात्मा की संतान है जितना हमने परमात्मा के ज्ञान को अपनी बुद्धि में समझा हुआ, कितना हम बाबा की श्री मत पर अपने आप को चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं तो हम ईश्वर की संतान नहीं। कितना बनना है उतना पुरुषार्थ कर सकते हैं, उतना फायदा आपको मिलेगा, उतना सुख आपको मिलेगा। प्रश्न, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है, कौन सा आपको निश्चय है और कौन सा आपको नशा है? ऐसे निश्चय, ऐसे नशा, हमें भगवान पढ़ाते, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के, ईश्वरीय संप्रदाय माना ईश्वर की बातों को मानने वाले ग्रुप, संप्रदाय एक ऐसा समूह जो ईश्वर की श्रीमत पर चलने वाला है, हम उस संप्रदाय के, वो था ईश्वरीय संतान, यह है ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलने वाले समूह के हम हैं, समूह में हैं, हमारे संबंध संपर्क वाले ईश्वरीय मत पर चलने वाले, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे, संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे, विश्व के मालिक बन रहे हैं और ये वो संगम का समय है जब हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आखिरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन रहे हैं, आखिरी औलाद से क्या बन रहे हैं, हम ईश्वरीय औलाद बन रहे हैं, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते, एक जन्म, दो जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए हम स्वर्गवासी बनते हैं। एक जन्म दो जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए हम स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। और इसमें भारी वस्तु का क्या मतलब है?
तो एक जन्म बहुत हो गया, ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो आधा कर।
इससे बारी कोई वस्तु नहीं, मतलब इससे बड़ा कोई एग्जाम या बड़ा पद कोई हो नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में बैठ, घर में अगर बच्चों की छिट छिट है तो अशांति रहती, वो अशांति रहती है, अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकलनी है। शांति के सागर बाप को याद करने, तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आखिरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग कलयुग किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानता, कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते, बल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे। हरदम बेखुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी सिर्फ इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान, वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहते, वहां है देवी औलाद। सतयुग में कोई भी अपने आप को ईश्वरीय संतान नहीं कहते, वहां है देवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, परंतु इससे पहले हम क्या थे? आसुरी औलाद थे। अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं, है नहीं, फिर रिपीट किया, कंसेप्ट क्लियर किया है। हम ब्राह्मण भी के हैं, रचना रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। देह भान में होने के कारण, देह में होने के कारण हम सब भाई बहन हैं। ईश्वरीय औलाद हो। ब्रह्मा हमारी माँ है, शिव हमारा बाप है, हम ब्रह्मा कुमार क्यों कहलाते, क्योंकि ब्रह्मा के कारण हम जीव आत्माएं हैं। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, भविष्य में जाकर हम देवी स्वराज्य पाएंगे। बाबा से राज्य मिल रहा है, भविष्य में हम जाकर देवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग सुख का धाम, कलयुग दुख धाम। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, ये बात तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, ये भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वे रचता है ना, नर्क का क्रिएटर तो है नहीं है, नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वे हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं, इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। ये समझ रखनी चाहिए, हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसरी अवगुण होना नहीं चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमारे अंदर कोई भी आसरी गुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, जिनकी हम औलाद हैं, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम देवताओं की संतान जाकर बने। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। छप जाने का मतलब क्या होता है, याद बिल्कुल छप जाती है, क्या मतलब है इसका? याद बिल्कुल छप जाती है, इसका क्या मतलब है? हाँ, एकदम सगाई होते ही। आजकल तो फिर भी देख लेते हैं, मिल लेते हैं, पहचान लेते हैं, जब उनकी शक्ल भी नहीं देखते थे तो भी उनकी बुद्धि में कोई ना कोई इमेज बन जाती थी। शादी के बाद पता लगता था, अच्छा जैसा सोचा था उससे ज्यादा मिला या उससे खराब मिला। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है कि ये मेरा बच्चा है, ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नर्क में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है, शरीर के बाप को कहेगा ये हमारा बाप है। अब ये तो है देहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए कि नहीं? ऐसा बाप हमेशा याद रहना चाहिए कि नहीं? बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है, बुद्धि में वर्षा ही याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट प्यारे से प्यारा है सब चले जाएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जब कि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कैसे हैं, कैसे रहते हैं बच्चे, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वे हैं ड्यूटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। सत्युग में अथाह सुख रहता है। वे बाप ही देते हैं। यहां तुम बाप के पास आए हो, यहां बैठ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे यहां इकट्ठे रहे। आप मधुबन में आए हो, यहां आकर के बैठ तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहां तुम बहुत उमंग से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। कितने नशे से आते हो मधुबन में, हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रखता है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। अब तुम्हारी बुद्धि में क्या है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लाइफ बना रहे, स्वर्ग के लाइफ बना रहे हैं। कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य रहे जिसको ये पता हो कि हम, एक भी मनुष्य नहीं पूरी दुनिया, जिसको ये पता हो कि हम एक्टर, जिसे कितनी वंडरफुल लाइन है, पूरी दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता कि हम आत्मा एक्टर हैं, ये हमारी ड्रेस। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं? कहते हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है, परमात्मा हमारा पिता है। अच्छा, फिर परमात्मा की संतान दुखी हो सकती है? बताओ, वो परमात्मा की संतान और दुखी हो, ऐसा हो सकता है? आज हमें क्या बात बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, एकदम बुद्धि के अंदर क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे तुम मेरी संतान ना थे, ना हो और ना रहे। सिर्फ संगम पर बनते हो और बनने के बाद, श्रेष्ठ बनने के बाद तुम फिर से वही नाटक करते। कलयुग में तुम दुखी हो तो किसकी संतान? रावण की संतान, मेरी संतान थो ना। सत्युग में तुम देवताओं की संतान हो, त्रेता संतान हो, और त्रेता में आप क्षत्रिय की संतान हो, द्वापर में आप वैश्य की संतान हो। सिर्फ इस समय तुम आकर बनते हो, जितना तुम बनते हो उतना तुम उच्च पद पाले। बस कोई डाउट है तो पूछो।
आत्मा है कि संतान?
यही ये बहुत अच्छा बात है कि हम आत्मा किसकी संतान है, किसी की भी नहीं। परमात्मा ने ये लाइन इसीलिए बोली कि मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया है, पैदा करूं तो मुझे बताना पड़े कि मैंने तुम आत्मा को कब जन्म दिया, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को। बनाई नहीं जाती है, आत्माएं भी हमेशा थी हैं और रहेंगी, स्वयंभू हैं। परमात्मा भी स्वयंभू है, हम आत्माएं भी स्वयंभू हैं। कृपाणी पांच तत्व प्रकृति के, 118 तत्व प्रकृति के स्वयंभू हैं और समय भी स्वयंभू है, इसलिए सत्य है। हाँ जी, उससे एक भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती।
आत्मा भी लिमिटेड होगी ना?
हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एक आत्मा फालतू नहीं हो सकती, फालतू हो जाएगी तो ड्रामा अगले कल्प में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा आकर ड्रामा में कुछ ना कुछ तो नया जोड़ेगी ना, फिर ड्रामा एक्यूरेट नहीं रहेगा। एक आत्मा यदि निकल जाए तो भी ड्रामा एक्यूरेट नहीं रहेगा। भाई मैं बता तो रहा हूँ ना, संख्या कौन बताएगा? या तो शिव बाबा बतावे, अब उसके पास इतनी नॉलेज नहीं कि शिव बाबा बता देवे कि कितनी संख्या है। और यदि हम पूछे बता देवे तो बच्चे मेरे बताने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं कह दूं कि 10 अरब है, क्या फर्क पड़ेगा उसे? उसे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये बात तो पूरे यूनिवर्स के अंदर साइंटिफिक प्रूव है कि पानी की एक बूंद कम नहीं होती, जितना पानी था है और रहेगा। जितनी भूमि थी, धरती थी, उतनी रहेगी। और हर एलिमेंट जितना था उतना ही रहता है, वो कभी कम और अधिक नहीं होता, क्योंकि इसे क्रिएट नहीं किया जाता और इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। तो जितना है उतना ही रहेगा, ये साइंस भी इस बात को मानती है। बस बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये लाइन बड़ी क्लियर है, तो इन क्लियर लाइन को हम कितना समझ पा रहे हैं, ये हमारी समझ की बात है। इससे क्लियर क्या होगा कि बनी बनाई बन रही। हूबहू रिपीट होता है, ये क्या कहता है? ड्रामा एक्यूरेट रिपीट होता है, परमात्मा भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। आपस में लड़ते क्यों? हम आत्माएं सब ब्रदर्स है ना, ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाते। यहां हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ब्रदर्स को आपस में कभी लूण पानी नहीं होना चाहिए। यहां तो बाप से भी लूण पानी होते, आपस में लूण पानी तो बात अलग। परमात्मा जो तुम्हारा कल्याण करने के लिए परमधाम से आया है, उससे भी तुम लूण पानी हो जाते हो। कितने अच्छे बच्चे हैं, परमात्मा से भी बच्चे क्या हो जाते हैं? लूण पानी हो जाते हैं। हो जाने दें, मैंने कितने कितने याद किया, सवेरे अमृत वेले, शाम को, रात को, कितना मैं याद करती थी, कितना पैसा दिया, कितना सब कुछ किया। मेरा पति मेरे पास वाले कमरे में फांसी का फंदा लगा रहा था, मेरे को जगा नहीं सकता, बता नहीं सकता था, मैं उसके कमरे में बैठी हुई थी। क्या बाबा है मेरा, ऐसा बाबा होता है क्या? ऐसे बाबा से तो ना होता तो अच्छा था। मैंने गलती की जो रोजाना सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले याद किया, रात को याद किया, इतना पैसा मैंने दे दिया। हाँ जी,
बाबा को समझा ही नहीं, ऐसे प्रश्न कर रहे, इसका मतलब बाबा को समझा नहीं।
हमने कितना समझा था, हम अपने आप से पूछ लेंगे, हम दूसरों से तो नहीं पूछते।
जब ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो समझो बाबा को नहीं समझा।
इसे कितना हम समझ पाए हैं अभी तक, ये अब देखे ना कि हमें इतना समय ज्ञान में चलते हुए हो गया, कितना हमने बाबा को अभी तक समझा। ये हर आत्मा अपने आप को चेक कर सकती है। तो लून पान तो बाबा के साथ हो गए ना, बाबा से नाराज हो जाना, बाबा से झगड़ना,
सब नंबर वाले
हैं, सब नंबर वाले। अच्छे अच्छे बच्चे लूण पानी हो जाते, माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे बाप को याद तो करते हैं, बाप का कितना लव है बच्चों पर, बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो, गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीछी बना दिया है, अब गुल गुल बनाते बाप, गुलगुल कौन बनाते हैं, बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह है, मोह भी है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। ये कौन सा बाबा कहेगा तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है? चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है, कौन से बाबा को चिट्ठी नहीं लिखने पर ध्यान जाएगा?
ब्रह्मा
बाबा, फिर बाबा को नहीं जाएगा? फिर बाबा को तो पता है किसने आना है किसने नहीं आना है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया हप कर जाती है। जरूर देह अभिमान होगा ना, बाप कैसे रहते हैं अपनी खुश खराफात लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो ना, कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्म इंद्रियां वश में रहती हैं, कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं, और यहां योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं। कर्म इंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रह जाती है, नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय अभी अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। ये है हज की बातें और ये है बेहज की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है, उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल, उनको उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारी भी तुम्हारा भी बुद्धि बल, उनका भी बुद्धि बल है और तुम्हारा भी क्या है बुद्धि बल है उनका भी बुद्धि बल तुम्हारा भी बुद्धि बल। उन्होंने साइंस की नॉलेज ली है, तुमने साइलेंस का बल इकट्ठा किया, क्योंकि उन्होंने साइंस को बार बार प्रयोग करके उसकी शक्ति को प्राप्त किया है और आपने साइलेंस में रह करके शक्ति को प्राप्त किया, इसलिए इसको साइलेंस का बल कहेंगे, उसको साइंस का बल कहेंगे, परंतु दोनों है बुद्धि बल। ये बात बुद्धि में बहुत अच्छी तरह दिखा
रही
है। साइलेंस साइंस की माँ है, बिना साइलेंस के साइंस का कोई काम नहीं हो सकता। परंतु साइलेंस बल है, साइंस बल बल कैसे बनता है यह हमने अच्छी तरह समझ लिया है। जब हम किसी भी नियम को किसी भी बात को अपने जीवन में बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं तो हम उस बात के एक्सपर्ट होते जाते हैं। अब साइंस वाला अपने साइंस के टॉपिक को साइंस की बातों को बार बार रिपीट करके वो अपना साइंस का एक्सपर्ट हो जाता है, और जो साइलेंस वाला है वो साइलेंस को बार बार रिपीट करके साइलेंस में एक्सपर्ट हो जाता है। जो रोटियां पकाती हैं बहने उन रोटी में एक्सपर्ट हो जाती है, चाहे कितने भी हों उनको रोटी बनानी नहीं आती है तो बहने बस रोटी बनानी नहीं आती है, टेढ़ी मेढ़ी बनाती रहती है, सही एक्यूरेट रोटी नहीं बनती है, फूलती नहीं है, प्रॉपर नहीं होती है रोटी, सड़ती धोती जाती है, उनका ध्यान कहीं और रहता है, जो सर्द रहते हैं उनकी रोटियां सड़ती धोती जाती है। साइंस की जितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वे है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वे विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो, ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तो बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, बल कितना भी आइडियाएं तुम जाए हो सिर्फ दो अक्षर याद कर, कोई कितना टेढ़ा मेढ़ा हो सब उसे दो अक्षर याद करने में ओ शांति आइडिया सिर्फ जाए, सिर्फ दो अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना, और संग तोड़ एक बात के संग एक बात को याद करना है, बाप कहते हैं मैं अब, बाप कहते हैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। ये हुआ जैसे कर्णी घोर को पुराना सम्मान दिया जाता है। फिर बाबा कहते मैं हूँ कर्णी घोर देखा है किसी ने? तुम बाप को क्या देंगे? कर्णी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, तुम बाप को क्या देंगे बताओ? लेने के लिए आ गया। इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, इसने भी अपना सब कुछ मुझे दे दिया, ये थोड़े ही यहां बैठ महल बनाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से ही कर रहे हैं। वे कर्ण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे ही दो मुंह हैं, सिर्फ तुम बच्चे हो। फिर बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए तो सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितनी देर के संबंधियों की याद रहती है, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। जितना हो सके बाप को याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलो और सबको भुलाते हो। और दुनिया में जितने भी आप रिश्तेदार चिपका कर बैठे हो ना, सबको भूल जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो, राजाई तुमको मिलती है, जरा ख्याल तो करो। कैसे ये खेल की रचना है, तुम सिर्फ बाप को याद करते हो, प्रदर्शन चक्र फिराते हो। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो, प्रदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो, मनुष्य को समझते हैं। भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के भी तो बच्चे थे ना, वो भी तो विकार में गए होंगे ना। अरे हाँ बच्चे, पूर्ण क्यों नहीं बच्चे, हाँ बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्होंने कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल आई।
बच्चे
हो सकते 16,108 बच्चे हुए
कृष्ण,
कृष्ण को तो हुए ना, राधा कृष्ण को नहीं हुए तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती तो बोलने में हो सकती। तो उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं, आज तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो आपका कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। आप मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। सपूत बच्चे तो फौरन फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते तो अपने को घाटा डालते। जो बाबा को पूरी मदद नहीं करेंगे तो अपने को घाटा डालते। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं, कितना पुरुषार्थ करता हूं, बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों पर जास्ती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़े। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकार विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए, बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारणा होती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम बच्चे ही हो जो सर्विस करने वाले, तो बाहर निकलते ना। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। जो मेरे पास है वो तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। उसके बदले सिर्फ तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। ये तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है, रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन प्रतिदिन जो उनको रात कहा जाता है, उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान नंबर एक, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना हो। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। आप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, बाप को अपनी खुशी खुश शराफात का समाचार जरूर देना है। वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण की का कर्तव्य ही हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी रहेंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी के को सेवा के विचार में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त होता है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। कोई कितनी साधना कर रहा है और उसके बाद यदि उसको साधनों की तरफ आकर्षण चला गया तो उसकी साधना खंडित हो जाती है। किसको समझ में आइए लाइन ये? साधनों का कति आकर्षण साधना को खंडित कर देती है, कौन बताएगा? आप प्रैक्टिकल में देख रहे होंगे जो भी टीचर्स बने इन साधनों के पीछे पागल हो गए हैं, वो अमृत वेला योग नहीं करते। उनके पास मुरली पढ़ने का भी टाइम कम हो जाता है। साधना पूरी नहीं कर पाते, सारा दिन पैसे के चक्कर में रहते। आज ईंट मंगाना है तो आज सीमेंट मंगाना है, तो आज रोड़ी मंगाना है, तो आज मजदूर को पैसा देना है, उसको ये करना है। अब बिचारी सारा दिन बागम बाग करके रात को जब थक के आएगी क्या करे? सारा दिन वो कुछ नहीं कर सकी, रात को थक के गिर गई, अब फिर कौन उठाएगा? हाँ, साधनों की आकर्षण, मेरे सेंटर पर फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, बड़ा बड़ा सेंटर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अब वो गाड़ी के चक्कर में बाबा को भूल जाएगा। कोई भी एम्पलीफायर बड़े वाला चाहिए, लाउड स्पीकर अच्छे वाला चाहिए, बोल ले गया लाउड स्पीकर अच्छे वाला मिल जाए, परंतु जब तक नहीं मिलेगा तब तक सेवा, तब तक पुरुषार्थ, तब तक साधना टूट गए। क्या करो? ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ब्रह्मा बाबा ने नॉर्मली कभी माइक पर मुरली नहीं सुना। तो बच्चे हमारी बातचीत में मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता हूँ यदि मुझे माइक पर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे इतने होते थे जो बिना माइक के ही उनसे बातचीत हो। अलर्ट इशारे, आत्म चित्त में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं तीन प्रकार की भाषाओं के अनुभवी होती हैं। अंतर्मुखी आत्माएं तीन प्रकार की भाषा के अनुभवी होती हैं। नंबर एक, नयनों की भाषा, पहचान करना कि हम अंतर्मुखी हैं या नहीं। नयनों की भाषा, नयनों से ही हम दूसरे को समझा दे मैं क्या कहना चाहता हूं। जिनको आपस में प्यार होता है वह आंख के इशारे से समझ जाते कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहना है, क्या करना है। नयनों की भाषा। नंबर दो, भावना की भाषा। मेरे अंदर क्या भावना है, आपके अंदर क्या भावना है, हम एक दूसरे की भावना को समझते। तीसरी है संकल्प की भाषा, आप सोचेंगे और मुझे समझ में आ जाए, मैं सोचूंगा आपको समझ में आ जाए। ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी सिर्फ साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे उतना इन तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सके। एक्सपर्ट हो गए हो बाबा, तो आप नयनों से ही उनको समझा देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बोलने का सुनने का टाइम नहीं होगा। उतना इन तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब किसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।